ग्रीक्स के बारे में आपको मालूम होगा कि उन्होंने एक बहुत कठिन, जिल्लत आमेज, घुटन वाली जिंदगी गुजारी थी, और उनके अगर अखवाल और चीजों को पढ़े, मसलन औरत के बारे में कहते हैं कि औरत दो ही मौके पर मर्द के लिए खुशी का सबब होती है, एक शादी के दिन और एक मौत के दिन। बहरहाल, इन्होंने एहसास कमतरी को खत्म करने के लिए कुछ मिथ्स ईजाद किए, मिथ्स यानी ख्याली कहानियां। आपने देखा होगा आज भी जो लोग एहसास कमतरी के शिकार होते हैं वो बहुत झूठे होते हैं। कभी आप किसी का एनालिसिस करें कि जो बच्चे मसलन कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाएं कि वो उनकी शक्ल अच्छी नहीं या वो किसी भी किस्म की, तो उनकी पर्सनालिटी में क्या आएगा, झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अक्सरियत झूठों की एहसास कमतरी का शिकार होती, क्यों? इसलिए कि वो जो कुछ होते नहीं वो लोगों को नजर आना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो बहसियत कौम यूनानी जो थे, एक किसी भी कौम थे, मजलूम कौम थे, जिन्होंने अपने आप को उभारने के लिए या बड़ा साबित करने के लिए क्या किया, कुछ खुराफात और कुछ फर्जी कहानियां घड़ ली, और उसको उन्होंने ग्रीक मिरेकल्स का नाम दिया, कुछ अपने से मोजज़ात वाबस्ता किए। और उनका एक कॉल है कि ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे, बिहोल्ड ऑल थिंग्स आर बिकमिंग न्यू, यानी पुरानी चीजें गुजर चुकी हैं, खबरदार सब चीजें नई हो रही हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने मजहबी अकायद में एक नई कई खुदाओं के तसव्वुरात कायम किए। यूनानियों को मिस्रियों की मुजस्मा साजी पसंद न थी क्योंकि उनके मुजस्मे अजीब व गरीब होते, मसलन किसी औरत के धड़ पे बिल्ली का मुंह होता कि गैर इंसानी जुल्म और जबर की अलामत था, इसी तरह आदमी के धड़ पे परिंदों के सर, शेर के धड़ पे बैल का सर, और इसी तरह के बेशुमार हैवानी और इंसानी इम्तिजाज से बने हुए मुजस्मे थे। इसके बरक्स यूनानियों ने अपने तखय्युल से अपने खुदा बनाए, यानी उन्होंने क्या किया, अपने खुदाओं की ख्याली तस्वीरें बनाई। जैसे एडिथ हैमिल्टन ने यूं लिखा है कि यूनानियों ने मिस्रियों के खिलाफ अपने तखय्युल से खुदाओं की तस्वीरें बनाई, अपने इमेज यानी खुदा के बारे में पहले एक इमेज कायम किया, फिर क्या किया, तो उसकी तस्वीर बना ली। अब ये जो तसव्वुराती मुजस्मे थे या तस्वीरें थी, इंतहाई खूबसूरत थी, बहुत पुरकशिश। इन चीजों ने मिस्रियों को बहुत मुतासिर किया। अब क्या हुआ, ना सिर्फ ये कि यूनानी आर्ट बल्कि उनका फलसफा और उनके अकायद और वो जो मुजस्मा साजी थी ना, उनकी तस्वीरें बनाना, वो मिस्रियों में भी आ गई। इससे जरा आपको ये भी पता चलेगा कि इस्लाम में मुजस्मा साजी को कंडेम क्यों किया गया, क्यों इतना बुरा भला कहा गया, क्योंकि ये असल में सबब बना शिर्क का। अब आप समझ रहे हैं ईसाई कहां से बिगड़े, यूनानियों के अफकार से मुतासिर होके। कहां से पहुंचे इनको यूनानियों के अफकार, मिस्रियों के जरिए से पहुंचे, जब इन्होंने मिस्र में तबलीग शुरू की, बजाय इसके कि उनको अपनी बातें देते खुद उनकी लिए बैठे, जैसे हम यानी होना ये चाहिए था ना, बड़े सगीर में मुसलमान हिंदुओं का कल्चर बदलते ये उनका ले बैठे, और उनके बुत खड़े थे हमने अपने लिटा के पूजने शुरू कर दिए। बहरहाल, अब क्या हुआ कि ईसाइयत यूनानी फलसफे से, शायरी से, आर्ट से, इन सब चीजों से मुतासिर हुई, और वहां से इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के और हजरत मरियम के मुजस्मे भी बनाने शुरू किए। यूनानियों के अंदर एक नजरिया तसलीस था, वो भी इन्होंने ले लिया। यूनानियों का नजरिया तसलीस वो क्या है, तीन चीजों पर मबनी है। एक जीएस, ZEUS, दूसरा अपोलो, और तीसरा बेकस। अपोलो APOLLO और बेकस BACHUS। जीएस जो था ये खुदाई या आसमानी, यानी आसमानी खुदा एक तरह से कह लें। जीएस कौन था, डिवाइन वर्ल्ड, आसमानी दुनिया से मुतल्लिक। अपोलो दरमियान में, और बेकस जमीनी खुदा दुनिया में। ये उनका एक फलसफा है। जीएस के बारे में इनका अकीदा क्या था कि ये फादर गॉड है, यूनानियों के ख्याल में हर चीज का देने वाला, हर तोहफा भेजने वाला, सबका बाप और बचाने वाला और इंसानियत का मुहाफिज कौन है? ज़ियस। पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने खुदाओं के तसव्वुराती मुजस्मे बनाए और उनमें से एक मुजस्मा या एक खुदा क्या था उनका? ज़ियस, जिसको वो फादर गॉड कहते थे। दूसरा अपोलो, पाक रूह, जिसे होली घोस्ट फिर कहा गया ईसाइयों के यहां। ये कहते थे कि अपोलो अपनी सलाहियतों की वजह से ज़ियस के करीब तरीन में से है, ये लोगों और खुदा के दरमियान वास्ता है। जिस तरह रूहुल कुदस को होली घोस्ट को एक बीच का वास्ता करार दिया गया कि ये लोगों को खुदा का पैगाम देता है, जिनके जरिए से, जिन पैगामात के जरिए से दुनिया अमन और सुकून में रह सकती है। अच्छा, अपोलो एक तैयारे का नाम भी था, एक खलाई मिशन था, एक वो भी एक लिंक था ना ऊपर नीचे। अच्छा, बेकस, सन ऑफ गॉड, जमीन का खुदा, गॉड ऑफ अर्थ। ये यूनानियों की माइथोलॉजी में तीन चीजें थी, ट्रिनिटी बेसिकली यूनानियों के अंदर थी। उनके यहां ज़ियस आसमानी खुदा, बेकस जमीनी खुदा, इन दोनों के दरमियान कौन? अपोलो, जो दोनों को जोड़ता था। जमीनी खुदा का काम क्या था? लोगों को तहजीब सिखाना। आसमानी खुदा का सब कुछ भेजना, अपोलो लाने वाला और जमीनी खुदा क्या करने वाला? उन चीजों को आगे बांटने वाला। अब आप देखें कि ईसाइयों ने क्या किया। ईसाइयों ने ये किया कि इन तीनों चीजों से मुतासिर होकर एक फलसफा ईजाद किया जिसका नाम ट्रिनिटी रखा। ईसाइयों के यहां एक फादर गॉड, यानी नौजुबिल्ला, फादर का लफ्ज बोल के अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करते हैं, होली एंजल यानी रूहुल कुदस हजरत जिब्रील, होली घोस्ट, और फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहि सलाम, जो जमीन में खुदा के क्या हैं, नुमाइंदे हैं या बेटे हैं, और वो ये सब कुछ आगे बांटने वाले हैं। अब आप जरा आयत को दोबारा पढ़ें, इस जरा सा खुलासा कर देती हूं। ईसाइयत में ट्रिनिटी कहां से आई? यूनानियों से। यूनानियों के यहां तीन खुदाओं का या तीन ताकतों का एक फलसफा है, उसके उन्होंने मुजस्मे भी बनाए, उससे मिस्री मुतासिर हुए, मिस्रियों से ये मुतासिर हुए, और यूं ये भटके। दोबारा देखिए, या अहलल किताब, अहले किताब, ला तगलू फी दीनकुम, अपने दीन में गुलव ना करो, यानी नबी को इलाह मत बनाओ, गैर अल हक, ना हक तौर पर, और इस काम में क्या ना करो, वला तत्तबियु, मत पैरवी करो, किसकी? अहवा कौमिन, उस कौम की ख्वाहिशात की। ये कौम दरअसल कौन है? यूनानी। कद दल्लू, जो खुद भी भटके, सब झूठ पे मबनी फलसफा, मिन कबल, इससे पहले, वह अदल्लू कसीरन, और उन्होंने कसीर मखलूक को बहकाया। आज भी आप देखें अंग्रेजी शायरी में, जितनी ग्रीक अंग्रेजी लिटरेचर में जितनी ग्रीक मैथोलॉजी का जिक्र है, जिन जिन लोगों ने कुछ ना कुछ लिटरेचर पढ़ा होगा उन सबको मालूम है, और वहां से मुजस्मा साजी का फन जो है वो सब हमारे अंदर उन्हीं के थ्रू किस कदर सरायत कर गया, और आज हम सोचते हैं कि उसके बगैर तो तरक्की ही मुमकिन नहीं और कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कौम तरक्की याफ्ता ही नहीं जिसकी मुजस्मा साजी के फन में तरक्की ना हो। बहरहाल कुरान क्या कहता है? अदल्लु कसीरन, उन्होंने बहुत सारी इंसानियत को भटकाया, वदल्लु अनसवा इस सबील, और वो खुद भी सीधे रस्ते से भटके। अच्छा, ये जो मालूमात मैंने आपको दी है, इसका जो सोर्स है, जो बुक्स का रेफरेंस है, एक बुक का नाम है माइथोलॉजी टाइमलेस टेल्स ऑफ गॉड्स एंड हीरोज, टाइमलेस टेल्स ऑफ गॉड्स एंड हीरोज, एडिथ हैमिल्टन की है, EDITH, mythology-timeless-tales-of-gods-and-heroes by Edith Hamilton, और दूसरी है ऑडिपस रेक्स, OEDIPUS, ऑडिपस REX, ये अलग है रेक्स। इसके राइटर का नाम है सोफोकल्स, SOPHOCLES, SOPHOCLES. बहरहाल, قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. कह दीजिए ए अहले किताब, मत गुलुव करो. गुलुव लफ्जी माना ज्यादती, हुदूद पार करना, हद से बढ़ना. ए अहले किताब, ला तगलू फी दीनकुम, अपने दीन में हद से ना बढ़ो, ज्यादती ना करो, इफरात ना करो. गैर अल हक, ना हक. और इसकी मिसाल क्या कि जैसे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजों को या मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ हालतों पे पैदा किया, उनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां मुतय्यन की या उनकी हैसियतें मुतय्यन की, तो उनमें अपनी मर्जी से कमी बेशी मत करो. मसलन इस्लाम का सीधा साधा अकीदा क्या है जो हर नबी के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया, कि इस कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है. अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए हर दौर में अंबिया भेजे. उन अंबिया को मुख्तलिफ हैसियतों में एक दूसरे पर फजीलत दी गई. तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, इन रसूलों तक पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को मुतय्यन किया. रूहुल कुदस ये पैगाम लेकर आए. वो अल्लाह और रसूल के दरमियान एक वास्ता थे और रसूल के जरिए पैगाम आम लोगों तक पहुंचाया गया. लेकिन लोगों ने क्या किया, इनमें से हर एक की हस्ती के बारे में गलत तसव्वुरात कायम किए, मुख्तलिफ फलसफों की बुनियाद पर. पैगंबर को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा करार दे दिया और उन्हें अपना ये अमल बहुत खुशनुमा महसूस हुआ. क्यों? दूसरी कौमों की देखा देखी, उनके फलसफों से मरूब होकर. रूहुल कुदस जो महज एक पैगाम लाने वाले थे, यहूद ने उन्हें अपना दुश्मन कहा, नसारा ने उससे आगे बढ़कर उन्हें खुदा का हिस्सा बना दिया. तो ये तमाम चीजें हुदूद को तोड़ने वाली और हद से बढ़ने वाली हैं. इसी का नाम गुलुव है, इसी से रोका गया. नसारा का अकीदा तसलीस, ट्रिनिटी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से कहीं भी साबित नहीं होता. ये चौथी सदी में वजूद में आया. इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 15वें एडिशन में मसीहियत के तहत रेवरेंड जॉर्ज विलियम नॉक्स, एक स्कॉलर हैं इनके, वो मसीही कलीसा के अकीदा तसलीस पर बहस करते हुए लिखता है कि अकीदा तसलीस का फिक्री सांचा ऐसा है कि यूनानी और यहूदी तालीमात इसमें ढाली गई हैं. इस लिहाज से ये हमारे लिए अजीब मुरक्कब है, मजहबी ख्यालात बाइबल के और ढले हुए एक अजनबी फलसफे की सूरत में. यानी खुद इनके अपने स्कॉलर्स इस बात को तस्लीम करते हैं कि दीन की तालीमात पर जब गैरों के अफकार मुसल्लत कर दिए गए और उनके तालीमात से मरूबियत की वजह से अपनी तालीमात को बदल दिया गया, तो वो एक नाकाबले फहम चीज बन गया. आपको शायद मैंने ये बताया था कि जिस दौर में मसीहियत अपनी हदों या अपने मुल्क से बाहर दूसरी अकवाम तक अल्लाह का पैगाम लेकर जा रही थी, आपको मालूम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद यही दरअसल दीन था जो दुनिया वालों को पहुंचाना था. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तो सिर्फ चंद लोग आप पर ईमान लाए, वो 10-12 हवारी थे. फिर उसके बाद क्या हुआ कि आस्ता आस्ता उन हवारियों की कोशिशों से حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور چونکہ آپ کی تعلیمات میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے جس پر آج تک کرسچنز عمل کر رہے ہیں، اور ان کے دین کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی انرجی اس بات پر لگتی ہے کہ مسیح علیہ السلام کے پیغام کو یا مسیحیت کو آگے پہنچایا جائے، تو جب انہوں نے اس دور میں یعنی تیسری چوتھی صدی میں یہ پیغام دوسری قوموں تک پہنچایا، تو جو قومیں اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں تھیں یعنی مصری اور یونانی، جب مسیحیوں کو ان سے سابقہ پیش آیا تو یہ لوگ ان کے افکار سے بھی مرعوب ہوئے۔ کل تو میں نے بتایا نا کہ کس طرح وہ دونوں میں مماثلت ہے، آج تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھیے کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ان کے افکار کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ اس دور کی ترقی یافتہ قومیں تھیں جن کا اپنا ایک فلسفہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ ترقی کی اصل بنیاد تھنکنگ پہ ہوتی ہے کہ آپ کے تھنکرز کون ہیں، فلاسفرز کون ہیں، آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے، زندگی کا نظریہ کیا ہے، اور پھر آپ کا آرٹ اور کلچر کیا ہے، آپ کے فنون لطیفہ کیا ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب کسی دوسری قوم کو آپ جا کر کسی ملک کو وزٹ کرتے ہیں تو اس قوم کی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، ان کی آرٹ گیلریز کو دیکھتے ہیں، ان کے میوزیمز کو دیکھتے ہیں، ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، یہی چیزیں پرکھنے کی کسی قوم کے معیار کو کہ وہ قوم کیسی ہے، انہوں نے کیا پروڈیوس کیا ہے، کیا بنایا ہے۔ کسی قوم کی بڑائی صرف اس سے نہیں ہوتی کہ وہ کس کی اولاد ہے، اس کی بڑائی اس سے ہے کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے۔ تو یہ مصری اور یونانی جو تھے، مصریوں کی تہذیب کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے نا کہ فرعونی تہذیب جو ہے اور فرعونی کلچر جو ہے اور اس کا آرٹ جو ہے، وہ ایک بہت ہی پریویلنگ کلچر تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اور اس کی ایک شان تھی۔ دوسری قومیں جب تباہ ہوئی، قوم عاد سمود، تو ان کے کلچر بھی تباہ ہوئے، ان کا آرٹ اور فن بھی تباہ ہوا، کیونکہ ان کی ساری زمینیں جو الٹ دی گئیں یا سر پہ گرائی گئیں یا ٹکرائی گئیں یا ان پہ آندھیاں آئیں۔ لیکن مصریوں کا حال عجیب ہوا کہ ان کی ساری قوم ڈوب گئی لیکن ان کے سارے فنون لطیفہ بچ گئے، وہ سب کا سب، ان کا جو آرٹ تھا وہ بچ گیا۔ اور آج تک آپ دیکھیں مصری مسلمان ہونے کے باوجود اپنا رشتہ جوڑتے ہیں فرعون سے، ان کے ہاں جو ترقی پسند لوگ ہیں، جیسے ہم انڈس ویلی سے جوڑتے ہیں اپنے آپ کو، اسی طرح وہ وہاں جوڑتے ہیں، ان کو اس پہ فخر ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہ دوسری طرف یونانی جو تھے، وہ ایک لمبے آپریشن کے بعد ترقی کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ اب یہ دونوں قومیں اپنے نظریات کے اعتبار سے، اپنی ترقی کے اعتبار سے اس وقت کی سویلائزڈ قومیں کہلاتی تھی۔ مسیحیوں نے جب اپنا دین انہیں دینے کی کوشش کی تو ان سے مروب ہو گئے اور کمپرومائز کیا، کچھ ان کو دیا کچھ ان سے لیا، اور ایک ملغوبہ تیار کر کے، ایک مرکب، جیسے یہ ان کا سکالر کہتا ہے نا جارج، ریورنڈ جارج جو ہے، تو ایک مرکب بنا دیا، غیر افکار، ایلین افکار جو تھے وہ ان کی مذہبی تعلیمات میں خلط ملت ہو گئے، ایک بلینڈ بن گیا، ایک نئی چیز نکل آئی۔ اس چیز سے ان کے ہاں کئی خرابیاں پیدا ہوئیں، اور اپنے دین کو انہوں نے کیا کیا، اس میں غلو کر دیا۔ اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، یہ ہر دور میں ایک کمزوری ہوتی ہے انسانوں کے درمیان کہ وہ نئے افکار سے متاثر ہوتے ہیں، جدید بننا چاہتے ہیں، جدیدیت کے شوق میں، ماڈرن بننے کے شوق میں، ہر چیز کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عیسائیت کو بھی اسی سے واسطہ پڑا اور سارا بگاڑ ان کے اندر آ گیا، اس کی اصلاح قرآن حکیم نے کر دی، جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں وہاں بتا دیا کہ کہاں کہاں غلطیاں، کیا کیا خرابیاں، خوب تنقید کی، اور اصل دین پھر اجاگر کر کے رکھا گیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کو کنڈم کیا گیا وہ شرک ہے، اور یہ شرک کہاں آ گیا، خود مسلمان قوموں کے اندر آ گیا، اس وقت کی مسلمان قوموں میں۔ उसके बाद आप देखें कि इस्लाम आया, पनपा, रूम और ईरान की सुपर पावर्स पर मुसलमान काबिज हुए, इस्लाम का फलसफा, इस्लाम की तालीमात, हिकमतें, सब कुछ दुनिया में प्रिवेल किया और 1000 साल तक मुसलमान इल्म और हिकमत और अफकार के एतबार से दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम थे जिसका कोई मुकाबिल न था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान कमजोर हुए, इतने में दूसरी कौमों ने अपने अफकार में तरक्की की और फिर एक वक्त आया कि मगरब का जो मादियत परस्ताना नजरिया था वो दुनिया में ताकत पकड़ गया और खुसूसन पिछली सदी के अंदर आकर दुनिया मरूब हो गई उनके इन फलसफों से, कहीं मार्क्सिज्म और कहीं डार्विन की थ्योरी और कहीं कोई और मुफक्किर, इनकी अपनी एक तारीख है। अब आज हमारा हाल क्या है कि हम एक तरफ तो वही दौरे जाहिलियत वाले शिर्क में पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जदीद अफकार से हम इतने मुतासिर हुए कि इस्लाम को उस ऐनक से देखना चाहते हैं, इस्लाम के साथ कभी इस्लामी सोशलिज्म लगाते हैं, कभी इस्लामी जमहूरियत लगाते हैं, कभी कुछ और, क्योंकि हम समझते हैं कि तरक्की हो नहीं सकती जब तक कि हम मॉडर्न थिंकिंग के मुताबिक इस्लाम का नक्शा न बना लें। हम चाहते हैं कि ढांचा जदीद दौर का हो और उसमें कुछ इस्लाम की भी आमेजिश कर ली जाए और एक नई चीज बेक करके रख दी जाए, एक नया केक बेक किया जाए। इस्लाम के साथ याद रखें किसी चीज की पैचिंग नहीं हो सकती, न किसी सोशलिज्म की हो सकती है, न किसी जमहूरियत की, न किसी और की। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसकी अपनी फिलॉसफी है, इसकी अपने अकायद हैं, ये एक अलग तरीका जिंदगी है और ये अल्लाह का दिया हुआ तरीका जिंदगी है जिसमें किसी और बेसाखी की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल किया, पीछे सूरत अल-माईदा में आप पढ़ चुके हैं, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने अपना दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पे तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया। जिंदगी के हर मौजू, हर चीज के बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है, ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम इस बारे में मुतजलजल हैं कि इस्लाम आज के दौर की जरूरियात को पूरा नहीं करता, कहीं भी शेकी है, तो फिर हमारे जो अकायद हैं वो भी मुतजलजल हैं, उन अकायद पर इस्लाम की इमारत जो है वो कायम नहीं हो सकती। तो आज के दौर में ईमान के रिवाइवल के लिए, ईमान की तजदीद के लिए जरूरी है कि हम आज के दौर की जो इंटेलेक्चुअल इन्वेजन है, गैर मुस्लिम थिंकर्स और फिलोसोफर्स के जो अफकार हमारे पढ़े लिखे तबके को मरूब किए हुए हैं, हमारे लोगों के ऊपर जो उनका भूत सवार है, उसको जब तक हम उतार नहीं फेंकेंगे, उस वक्त तक हम इस्लाम की सही तालीमात पर अमल कर ही नहीं सकते। हमारी जितनी भी खराबियां हैं उन सब की इस्लाह उसी वक्त होगी कि जब हम अपने दीन को उसकी असल प्योर खालिस बुनियादों पर कायम करें। और उसका बुनियादी तरीका क्या है? ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल टेक्स्ट, इसको लोगों तक पहुंचाया जाए और खुसूसन पढ़े लिखे लोगों तक, और उन नजरियात और बातिल अफकार का तोड़ हो। किसके जरिए? अल्लाह के दिए हुए कलाम के जरिए। आज का दौर जिसमें मुसलमान जिस गुबार के अंदर छुप गए हैं या उनकी सलाहियतें या उनके जहन पुलूट हो चुके हैं, वो क्या है? गैरों की मरूबियत और अपने दीन के मुकम्मल ना होने पर ईमान। कि जब तक हमारा ईमान इस पे न जम जाए कि जो कुछ है ये काफी है, कफा बिल्लाही शहीदा, और ये मुकम्मल है, और अल्लाह ताला हमारी हर जरूरत को, हमारी हर हाजत को और हमारे आज के दौर की तमाम मुश्किलात को जानते थे जिसके लिए हमें ये किताब दी गई। जब तक हमारा ये किताब पर ईमान लाने का मतलब भी यही है कि जो कुछ किताब कहती है सच कहती है और बिल्कुल अप टू डेट है, कोई बैकवर्डनेस नहीं, कोई पुरानी बातें नहीं, कोई पुराने किस्से नहीं। पुराने किस्से अगर बताए गए तो इसलिए कि आज भी इंसान अंदर से पुराना ही है, अंदर की खराबियां वही हैं जो 2000 साल पहले के इंसानों में थी। वहां हसद था, आदम के दो बेटों में हसद हुआ, तो क्या आज के इंसान से हसद खत्म हो गया? नहीं, आज भी वही कुछ। आदम के एक बेटे ने दूसरे को कत्ल कर दिया, तो क्या आज इंसान कत्ल वारत का शिकार नहीं है? हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? खराबियां तो वही हैं जो पहले दिन से हैं। तो इसलिए ये कहना कि आज के इंसान की इस्लाह के लिए कोई नया फलसफा आए, तो किसी नए फलसफे की जरूरत नहीं। कुरान को इसीलिए महफूज रखा गया कि आज भी हमको काफी हो जाए, और अगर कोई इसको काफी नहीं समझता तो उसके ईमान में खलल है, उसको इस खलल की इस्लाह करनी चाहिए। हर दौर का एक फितना होता है, हर दौर का एक शिर्क का नया अंदाज होता है। आज के दौर के शिर्क का अंदाज यही है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को काफी नहीं समझते, उन पर एतमाद नहीं करते, उन पर हमारा मुकम्मल ईमान और यकीन नहीं। यही वजह है कि ना हम मुसलमान नजर आते हैं ना कुछ और, आधे कुछ हैं आधे कुछ हैं। तो यहाँ पर क्या फरमाया, या अहलल किताब, ए किताब वालो, ए किताब रखने वालो, ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, अपने दीन में गुलू मत करो ना हक तौर पर। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद दल्लू, मत पैरवी करो ऐसी कौम की ख्वाहिशात की जो खुद भटक गए, भटक चुके। आज भी आप देखें कि जितनी नए दौर की मादियत परस्ताना मुलहिदाना सोचे हैं, इन सब की बुनियाद में भी ग्रीक फिलोसफी है। आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, सोशियोलॉजी पढ़ी हो, तो आपने देखो हत्ता के उस सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो भी कहां से जाके लाते हैं, वहीं जाके टकराती। और कुरान में हमें खास तौर पे मना किया गया कि उस कौम की पैरवी मत करो जो खुद भटक चुके। वह अदल्लू कसीरन, और उन्होंने बहुत सौ को भटकाया, वो है खराबी की जड़। और हम है कि पलट पलट के वहीं उन्हीं बुनियादों को तलाश करते, उन्हीं को कुरेदते हैं, उन्हीं को उन्हीं के अंदर रिसर्च करते हैं और वहीं से मसाइल का हल तलाश करते हैं। वदल्लू अन सवा इस सबील, और वो भटक गए दुरुस्त राह से, एतदाल की राह से, हमवार राह से। ये आयत अब देखें कि आयत 77 एक आयत है, लेकिन इस आयत ने आपको एक की दे दी है कि भटकने का, खराबियों का सबब क्या है, किस चश्मे से पानी पीना सारी बीमारियों की जड़ है। अब देखें कि ग्रीक फिलोसोफर्स में अफलातून, अरस्तु, एरिस्टोटल, हर जगह पढ़ाया जाता है, हर सब्जेक्ट के अंदर उसके अफकार मौजूद हैं। और जब तक उसे कोट ना कर लिया जाए, यूं लगता है कोई इल्म और हिकमत मुकम्मल ही नहीं हुई। कितने ज्यादा इनके अफकार हमारे जहनों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली छाए हुए हैं।